یہاں پہ مقتدون کا لفظ اہم ہے. سورۃ الزخرف آیت نمبر 23 کے آخر میں آیا ہے. اس کے معنی ہیں اطاعت کرنا, پیروی کرنا, تابعداری اور فرما برداری کرنا. قرآن میں اطاعت کے لیے 8 لفظ آئے ہیں اور اقتدا جو ہے اس کا دوسرا درجہ ہے. کسی کی پیروی کرنا, اس جیسا کام کرنا, نیکی اور دین کے راستے میں کسی کی پیروی کرنا. اور آپ اس کی فیملی کے الفاظ یاد کر لیں تو آپ کو مقتدون جو ہے اس کے معنی یاد کرنا آسان ہو جائیں گے. جیسے مقتدی آپ اکثر سنتے ہیں نا, کہ مقتدی کون ہوتے ہیں؟ جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, جو اس کو امام کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو مقتدی, اسی طرح اقتدا, اور اسی طرح جو ہے وہ مقتدون. اور آپ نے یہ لفظ جو ہے قرآن میں پہلے بھی پڑھا تھا. کہاں پڑھا تھا آپ نے؟ سورت تھی, سورت الانام میں آپ نے پڑھا تھا, سورت الانام, اور اس کی آیت تھی 91, اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہم مقتدی. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی, تو تم ان کی ہدایت کی پیروی کرو. تو قدوہ جو ہے, قدوۃن, مقتدا اور رہنما اور پیشوا کے معنی میں آتا ہے. اور ویسے تو عام طور پہ یہ اچھی پیروی کے لیے آتا ہے, لیکن اگر کسی کا جو رہنما ہے یا مقتدا ہے وہ برا ہو, تو پھر یہ بری پیروی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ یہاں پر آپ برے معنی میں پڑھ رہی ہیں کہ شرک کرنے والوں نے کیا کہا, جو امیر لوگ تھے, سوسائٹی کے امیر ترین لوگ, انہوں نے کہا نمبر 1 کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے. نمبر 2 انہوں نے کہا وَإِنَّ عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ, اور ہم انہی کے نقشے قدم کی پیروی کر رہے ہیں. تو اثر واحد ہے اور آثار اس کی جمع ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قَالَ, ہر نبی نے ان سے پوچھا اَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم اولو جئتكم, کیا اگرچہ میں لاؤں تمہارے پاس بأهدى, سیدھا راستہ. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ جا آ کا مطلب آنا ہوتا ہے, لیکن جب اس کے ساتھ با بعد میں آتا ہے تو لانا کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں. تو اولو جئتكم بأهدى, کیا میں لاؤں تمہارے پاس زیادہ سیدھا راستہ. یہاں پہ عہدہ جو ہے وہ افعلو کے وزن پہ ہے, مطلب آپ کو نظر نہیں آ رہا لیکن یہ اسم تفصیل ہے, اسی معنی میں ہے. حرف علت والے جو لفظ ہوتے ہیں نا, جن میں یا آ جائے گا, و آ جائے گا, الف آ جائے گا یا حمزہ وغیرہ, تو آپ کو وہ اس وزن پر نظر نہیں آئیں گے, لیکن معنی وہی دیں گے. تو ہر نبی نے ان سے پوچھا کہ اگرچہ میں لاؤں تمہارے پاس زیادہ سیدھا راستہ, مما اس سے جو, وجد تم علیہ, جس پر پایا تم نے, آباءکم, اپنے باپ دادا کو, کہ کیا تم پھر بھی اسی راستے پر چلو گے, خواہ میں اس راستے سے زیادہ صحیح راستہ تمہیں بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. قالو, انہوں نے کہا, انا بما ارسلتم بہی کافرون, بے شک ہم اس کے ساتھ جو تم بھیجے گئے ہو اس کا انکار کرتے ہیں. تو انہوں نے سارے رسولوں کو یہی جواب دیا کہ جس دین کی طرف بلانے کے لیے تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے منکر ہیں. فانتقمنا منہم, آخر کار ہم نے ان سے انتقام لیا. فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین, اور دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام جو ہے وہ کیا ہوا. تو پیاری بہنوں, یہ جو آیات ہیں, جو آج کا ہمارا یہ لیسن ہے, لیسن نمبر 172, آیت نمبر 1 سے لے کر 25 تک, جو سورۃ زخرف کی آیات ہیں, تو یہ ہمارے سامنے عمل کے کیا اصول جو ہیں وہ پیش کرتی ہیں. اس میں سب سے پہلی بات کہ قرآن کی عظمت کا احساس. تو آپ اپنے آپ سے پوچھیں, آپ اپنا محاسبہ کریں کہ کیا آپ کے دل میں قرآن کی عظمت کا احساس پایا جاتا ہے. قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے. قرآن مجید جو ہے وہ ہمارے غموں کا مداوا ہے, ہماری پریشانیوں, مسائل, مشکلات کا اس کے اندر حل پایا جاتا ہے. تو क्या आप कुरान को अपना ओढ़ना बिछोना समझती हैं? क्या आप कुरान से दोस्ती करती हैं? मुझे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस बहुत मुतासिर करती है कि मेरी उम्मत के लिए सबसे बेहतर इबादत कुरान की तिलावत है। और एक और हदीस है कि जो इंसान या जो बंदा कुरान की तिलावत में इतना मसरूफ़ हो कि वो मुझसे दुआ मांगने का मौका ना पा सके, तो मैं उसके बग़ैर मांगे ही मांगने वालों से ज़्यादा दूंगा। यह हदीसे कुदसी है और फरमाने वाले हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। तो जब इंसान कुरान पढ़ने पढ़ाने में मसरूफ़ होता है तो अल्लाह ताला उसको बिन मांगे मांगने वालों से ज़्यादा देता है। तो आइए कुरान से दोस्ती करें और इसकी तिलावत और इसकी सूझबूझ दुनिया कमाने के लिए नहीं, हदायत के लिए जो है वो इससे ताल्लुक़ पैदा करें, हदायत के लिए, अल्लाह के यहाँ पास होने के लिए, कामयाब होने के लिए, और कुरान की अज़मत का एहसास अपने दिल में इस तरह से बिठाएं कि ज़ाहरी पाकी और बातनी पाकी का ख्याल रखें, दिल को बुरे जज्बात, ख्यालात, शिरकिया जो ख्यालात हैं उनसे दूर करें। हज़रत इकरमा, आप नोट कर लें, हज़रत इकरमा रज़ी अल्लाह अन्हो जब कुरान शरीफ खोलते तो अक्सर बेहोश हो जाते और फरमाते, ये मेरे जलाल और अज़मत वाले परवरदिगार का कलाम है। ये वो अजीम किताब है जिसने अबू बकर को जो है वो सिद्दीक बना दिया और उमर जो थे फारूक के लाए, उस्मान गनी बन गए और अली रज़ी अल्लाह अन्हो जो थे वो इल्म का दरवाज़ा थे और बड़े ही बहादुर थे। और इसकी अज़मत क्या है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से सीखिए। रज़ी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं, अलकारिया और अलकदर जैसी छोटी छोटी सूरतों को समझ कर पढ़ना मैं इससे ज़्यादा बेहतर समझता हूँ कि अलबकरा और आले इमरान जैसी बड़ी बड़ी सूरतें फर फर पढ़ जाऊँ और कुछ ना समझूँ। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात सारी रात एक ही आयत को दोहराते रहे, सूरत अलमाइदा आयत 118, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक वइन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। तो अमल का पहला उसूल क्या है कि कुरान की अज़मत का एहसास जो है वो अपने दिल के अंदर बिठाया जाए। अमल का दूसरा उसूल कायनात की निशानियां, रबूबियत के दलाइल, उनको देखते हुए, उनको इस्तेमाल करते हुए अल्लाह का कुर्ब हासिल किया जाए, अल्लाह के करीब हो जाए। नंबर तीन, सवारी पर बैठने की दुआ याद कर लीजिए और ये आयत नंबर 13 और 14 में सूरत ज़ुख़रुफ़ में मौजूद है। और इसके अलावा वो तवील दुआ जो मैंने आपको सुनाई है ये आपको आदाब ज़िंदगी से मिल सकती है और हिस्न हसीन में मिल सकती है और मुख्तलिफ दुआओं की किताबों में इंशाल्लाह आपको मिल सकती है। और फ़ज़कुरूनी जो दारुल ईमान ने किताबों दुआओं की किताब मुरतब की है इंशाल्लाह आपको उसमें भी मिल सकती है। तो असल बात यह है कि इसको याद किया जाए और इसको अपना मामूल बनाया जाए और फिर हर सफ़र हमें आखरत के सफ़र की याद दिलाए। फिर अमल का तीसरा उसूल कि क्या हमारे घर के जो मर्द हैं, बेटे हैं, भाई हैं, वो इस बात को याद रखते हैं, क्या उन्हें ये बात याद है कि हमें जेवर और रेशम जो है उसको इस्तेमाल नहीं करना, हमें सोने को और रेशम को इस्तेमाल नहीं करना। और कहीं आप जो हैं वो किसी को, लड़के को, मर्द को, आप किसी को सोने का तोहफा तो नहीं देती, क्योंकि हमें सुन्नतों को ज़िंदा करना है, हमें इस्लामिक वैल्यूज़ जो हैं उनको जो है वो आगे जो है वो मुंतकिल करना है। फिर अमल का चौथा उसूल ये है कि बेटियां जो हैं ये अल्लाह की रहमत हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर आप सास हैं तो आप बेटी की पैदाइश पर सोग मनाती हैं, आप माँ हैं तो आप बेटी की पैदाइश पर सोग मनाती हैं, आप ताने देती हैं, आप ऐसी बातें करती हैं, तो आप याद रखें कि औरत जो है उसका कोई कसूर नहीं है कि उसको अगर बेटे की बजाय बेटी पैदा होती है। और वो तो बेटे के लिए जितनी तकलीफ़ उठाती है उसी तरह वो बेटी के लिए तकलीफ़ उठाती है। तो ये तो अल्लाह की देन है, अल्लाह जिसको चाहे बेटी दे और जिसको चाहे बेटा दे। तो बहसियत मुसलमान के मर्द हो या औरत, तो जो भी औलाद हो, हमें उसके लिए अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह, तो इसको मेरे लिए आजमाइश ना बनाना, तो उसको मेरे लिए फितना ना बनाना, बस आप इसे मेरे लिए सदका जारिया बना दीजिए, और ये मेरे मुझे जो पेपर दे रहे हैं औलाद का, आप मुझे इसमें पास कर दीजिए, यही दुआ करनी चाहिए। और प्यारी बहनों, अमल का जो आखिरी उसूल है वो ये है कि अबाओ अजदाद की जो मुशरिकाना रस्में हैं उनसे नाराज़ हो जाइए, उनको अपने घरों से निकाल फेंकिए, मुशरिकाना रस्मों से दोस्ती छोड़ दीजिए और अल्लाह के रसूल की अतात कीजिए। अल्लाह ताला मुझसे और आपसे राज़ी हो जाए, बेहतरीन अमल करने वाला बनाए और हमें उन लोगों में शामिल कर ले जो कि तौहीद परस्त हैं और अल्लाह ताला की अतात करते हैं और कुरान को सही से समझते हैं। और मुझे उम्र फारूक रज़ी अल्लाह नो की ये दुआ बड़ी प्यारी लगती है कि अल्लाहुम्मा रज़ुकनी तफक्कुरा व तदब्बुरा बिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक वल फहमला वल मारिफाता बिमानी वन नज़र फ़ी अजाइबिह वल अमला बिज़ालिका मा बकीत इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैका।